थे स्वर्ग में प्रभु का जीवित वचन। सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
प्रिय श्रोता नमस्कार, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन लेकर एक बार फिर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं और आशा करते हैं कि आप सब भी आज का अध्ययन करने के लिए हमारे साथ तैयार हैं। हमें पूरा विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से प्रकाशित वाक्य पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं और इस पुस्तक का मुख्य विषय है भविष्य में कलीसिया और उसका स्वामी। इसके लेखक यूहन्ना हैं। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर गीत।
कठिन रास्ता है, ले चल मेरी आत्मा को तू, कैसा कठिन रास्ता है।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर की दया से कुशल पूर्वक हैं और हमेशा की तरह आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए रेडियो के निकट तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ और अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम सब इन दिनों बाइबल में से प्रकाशित वाक्य की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं, जो बाइबल की अंतिम पुस्तक है। और इस पुस्तक में पिछले अध्ययन में हमने अब तक 21 अध्याय उसके एक और दो पद तक का अध्ययन किया है। आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगे। हमारे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में फिर से दिया है, ताकि हम आपके जीवित और सामर्थ्य वचन का अध्ययन रेडियो के माध्यम से अलग अलग स्थानों पर बैठ करके एक साथ कर सकते हैं। आज हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक से अपने अध्ययन को आगे बढ़ाते हैं। हमारी विनती है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें, ताकि जब वे आपके वचन को सुनते हैं तो आपका वचन प्रत्येक के जीवन से बोलने और बातचीत करने पाए, हम सबों को सिखाने और समझाने पाए। पवित्र आत्मा, आप प्रत्येक की सहायता करें ताकि इस अध्ययन के द्वारा हम आपको महिमा देने पाएं। इस अध्ययन पर अपने आशीष दे और हम सब की सहायता करें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, हम अपने अध्ययन के क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 21 अध्याय उसके तीन पद से अपने अध्ययन को आरंभ करेंगे और यहाँ पर हम इसके शीर्षक को देखते हैं, नया युग। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 21 अध्याय उसके 3 और 4 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा, वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु न रहेगी और न शोक न विलाप न पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रहीं। लिखा है, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। यह डेरा क्या है? अध्याय 1 उसके पद 14 में यूहन्ना कहता है, और वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया, उसकी देह क्रूस पर मारी गई, परंतु वह महिमामय देह के साथ फिर जी उठा। हमें भी महिमामय देह दी जाएगी और हम उसके साथ नए यरूशलेम में वास करेंगे। सोने की सड़क का वास्तव में कोई महत्व नहीं है, आप कैसी सड़क पर चलते हैं इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। महत्वपूर्ण बात तो यह है कि हम मनोवैज्ञानिक तथा आत्मिक मूल्य को समझें और अपनाएं। लिखा है, वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। आज की महत्वपूर्ण बातें उस दिन जाती रहेंगी। किसी समाचार पत्र में वर्षों पूर्व एक उक्ति छपी थी, जितनी बत्तियां सड़क पर हैं उतने ही दिल टूटे हुए हैं। संसार में अनेक दुखी एवं अकेले लोग हैं, परंतु नए यरूशलेम में आंसू बहाना नहीं होगा। लिखा है, इसके बाद मृत्यु न रहेगी। जी हां, यह एक अद्भुत विकास होगा। मनुष्य लगातार मर रहा है, कब्रिस्तान की यात्रा समाप्त नहीं होती है। मेरी जानकारी में एक अभियंता था जो सड़कों की योजना बनाता था। मैंने उससे एक दिन पूछा, पहाड़ों घाटियों और नदियों पर मार्ग बनाना आपके लिए सबसे कठिन काम होगा। उसने कहा, हमारी सबसे बड़ी समस्या है कब्रिस्तानों को बचाकर चलना। आज पृथ्वी एक महान कब्रिस्तान है, परंतु यह सब एक दिन समाप्त हो जाएगा। कब्रिस्तान का रखवाला बेरोजगार हो जाएगा, यहां तक कि डॉक्टर भी बेरोजगार हो जाएंगे, क्योंकि आंसू बहाना नहीं होगा और ना शोक ना विलाप ना पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रहीं। हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 21 अध्याय के 5 पद में आगे पढ़ते हैं, जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूं। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य हैं। मेरे प्रियो, कहता है कि विश्वास के योग्य और सत्य हैं। वह सब कुछ नया कर देगा। मेरे लिए यह बात सबसे अधिक अर्थपूर्ण है। मैं आपके बारे में तो नहीं जानता, परंतु इस जीवन में कभी संतुष्ट नहीं हुआ हूं। मैंने देखा है कि मैं निराश ही रहता हूं। मैं जितना करना चाहता हूं उतना कभी नहीं कर पाया हूं। मैं जैसा मनुष्य होना चाहता हूं वैसा कभी नहीं बन पाया हूं। मैं तो वह उपदेश भी नहीं दे पाया जो मैं देना चाहता हूं। उपलब्धियों पर कहीं ना कहीं दाग ही दिखाई देता है, परंतु प्रभु हमसे कहता है कि देख मैं सब कुछ नया कर देता हूं। आप एक नया आरंभ कर सकते हैं। मैं तो इस दिन की प्रतीक्षा कर रहा हूं जब सब कुछ नया हो जाएगा और हम नया आरंभ करेंगे। क्या आपने कभी नए आरंभ और शिक्षा के पुनः आरंभ की संभावना पर विचार किया है, जिसका अंत ना हो और जो अनंत काल तक चलता रहे? मेरे मित्रों, मनुष्य का सामर्थ और योग्यता। जब मनुष्य बाबुल का गुम्मट बना रहा था, तब परमेश्वर ने कहा था उत्पत्ति की पुस्तक 11 अध्याय उसके 5 से 7 पद में, उनके लिए कुछ भी अनहोना ना होगा, इसलिए आओ हम उतर के उनकी भाषा में गड़बड़ी डालें। वैज्ञानिकों और प्रचारकों के लिए यह कहना महामूर्खता है कि मनुष्य चांद पर नहीं जा सकता। मेरे विचार में तो वह उससे भी अधिक दूर जाएगा। मनुष्य परमेश्वर द्वारा रचित एक बुद्धिमान प्राणी है। उसके सामर्थ्य को मृत्यु नष्ट कर देती है, परंतु अनंत काल के संदर्भ में उद्धार प्राप्त मनुष्य का भविष्य कैसा महान है। मेरे प्रियो, यहां हम सब कुछ नया हो जाने के महिमामय भविष्य को देख सकते हैं। हम नया आरंभ करेंगे और हमारे विकास का अंत नहीं होगा। प्रभु यीशु के बारे में यशायाह ने लिखा है, यशायाह नबी के पुस्तक 9 अध्याय के 7 पद में, उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत ना होगा। उन्नति और विकास निरंतर होता रहेगा। ऐसे भविष्य की कल्पना करके आप देखें, उस दिन मैं वह सब कुछ जान लूंगा जिसे मैं आज तक जानने में सक्षम नहीं हुआ हूं। प्रकाशित वाक्य के पुस्तक 21 अध्याय उसके 6 और 7 पद में आगे हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी हो गई हैं। मैं अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत हूं। मैं प्यासे को जीवन के जल के सोते में से सेंत मेंत पिलाऊंगा। जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा, और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। लिखा है, मैं अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत हूं। यह प्रभु यीशु के वचन है, क्योंकि इस पुस्तक के प्रथम अध्याय में उसकी यही पहचान प्रकट की गई है। अपनी नई देह में विश्वासी परमेश्वर और परमेश्वर की बातों के प्यासे होंगे और वे संतुष्ट रहेंगे। मैं प्यासे को जीवन के जल के सोते में से सेंत मेंत पिलाऊंगा। और मत्ती सुसमाचार 5 अध्याय के 6 पद में उसने कहा, धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। मेरे प्रियो, अपने विश्वास के कारण सब विश्वासी जयवंत हैं। लिखा है, जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा। पहला योहना की पत्री 5 अध्याय के 4 पद में वचन कहता है, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है वह हमारा विश्वास है। कहता है, मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। यूहन्ना के सुसमाचार 1 अध्याय के 12 पद में प्रभु यीशु ने कहा, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। जी हाँ, इन वस्तुओं का वारिस होगा। यह परमेश्वर के पुत्रों को दी गई प्रतिज्ञा है। रोमियो के पत्र 8 अध्याय उसके 16 और 17 पद में पौलुस कहता है, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और यदि संतान हैं तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। मेरे प्रियो, आगे लिखा है, मेरा पुत्र। यह यूनानी भाषा का अर्थात मूल भाषा में एक अति असामान्य अभिव्यक्ति है। विंसेंट का कहना है कि यूहन्ना के लेखों में केवल यही एक स्थान है जहां विश्वासी को परमेश्वर का पुत्र कहा गया है। केवल परमेश्वर ही ऐसा कह सकता है, मेरा पुत्र। और यहां वह कहता भी है, कलीसिया में तो परमेश्वर के जन हैं, परंतु वे एक से अधिक हैं। वे एक अद्वितीय एवं महिमामय रूप में परमेश्वर के पुत्र हैं। यूहन्ना कहता है, पहला यूहन्ना के पत्र 3 अध्याय के 2 पद में, हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ है कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। यह हमारे लिए अद्भुत बात है। आगे हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य के पुस्तक 21 अध्याय उसके 8 पद में लिखा है, परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनहों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है, यह दूसरी मृत्यु है। मेरे प्रियो, इस पद से संबंधित अनेक आश्चर्यजनक तथ्य हैं। नया आकाश और नई पृथ्वी के प्रकट होने पर नरक और खोए हुओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वे तो ज्यों के त्यों ही अनंत काल में प्रवेश करेंगे। दूसरा, पाप की संभावना समाप्त हो जाएगी। जिसके कारण मनुष्य नए आकाश और नई पृथ्वी की सीमा लांघने का प्रयास करता रहा और भयभीत, अविश्वासी तथा हत्यारा आदि बना। पाप और उसकी संभावना नई सृष्टि के बाहर कर दी गई है। अंतिम तथ्य है कि आग की झील वास्तविक है और अनंतकालीन है। यह दूसरी मृत्यु है और तीसरा पुनरुत्थान नहीं है। यह परमेश्वर से अनंत वियोग है, जो एक ऐसी भयानक एवं भयावह दशा है जैसी अन्य कोई नहीं है। मेरे मित्रों, हम आगे देखेंगे नया यरूशलेम, दुल्हन का अनंत निवास स्थान। इस नगर का प्रकट होना सौंदर्य का अर्थात सुंदरता का और परमानंद का शुद्धतम स्वरूप है। बड़े बोल उसके गुणों का वर्णन करते हैं और उसके चित्रण की बात आती है तो वर्णन के लिए शब्द कम पड़ते हैं। उसकी भावी महिमा की कल्पना यहाँ के तीर्थ यात्रियों के लिए आत्मिक शक्तिवर्धक औषधि है। नया यरूशलेम वास्तव में हजार वर्ष के राज्य का उत्तरकालीन वास्तविक नगर है, क्योंकि उसका प्रकट होना हजार वर्ष के बाद अनंत काल के आरंभ तक नहीं है। यह नगर वास्तव में प्रभु यीशु के मन में था जब उसने कहा, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसके 2 पद में, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने को जाता हूं, परंतु इसलिए स्वर्गिक नगर पर से पर्दा तब तक नहीं उठेगा जब तक कि पृथ्वी का खेल संतोषजनक अंत तक नहीं पहुंचेगा। पृथ्वी का दुख अनंत युग के आरंभ होने तक शांत नहीं होगा। मेरे प्रियो, नया यरूशलेम अनंत काल के लिए वैसा ही होगा जैसा यहाँ का यरूशलेम हजार वर्ष के प्रभु राज के लिए होगा। सांसारिक यरूशलेम समाप्त नहीं होगा, परंतु वह अनंत काल में दूसरे स्थान पर होगा। यरूशलेम में धार्मिकता का बोलबाला होगा, यह नए यरूशलेम का वातावरण होगा। प्रभु राज में भी असिद्धता और विद्रोह रहेगा। सिद्धता और पाप रहित वातावरण उस स्वर्गिक नगर की पहचान होंगे, जिस प्रकार प्रशासन से अधिक राजा को रानी प्यारी होती है, उसी प्रकार नया यरूशलेम इस पृथ्वी की नगरी से महान होगा। परंतु इसके कारण न तो इस सांसारिक नगर पर प्रभाव पड़ेगा, न ही उसे दुख होगा। वह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की नाई कह पाएगी, यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय के 29 पद में, जिसकी दुल्हन है वही दुल्हा है। नया यरूशलेम कलिसिया का निवास स्थान होगा, कलिसिया का अपना घर होगा। यही वह नगर है जिसकी ओर कलिसिया अग्रसर है। अब हम वस्तुकार का नक्शा पढ़कर इस नए आवास के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए हम पढ़ें प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 21 अध्याय उसके 9 पद में लिखा है, फिर जिन 7 स्वर्गदूतों के पास 7 अंतिम विपत्तियों से भरे हुए 7 कटोरे थे, उनमें से एक मेरे पास आया और मेरे साथ बातें करके कहा, इधर आ, मैं तुझे दुल्हिन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊंगा। पद 9 से 21 में इस नगर का वर्णन किया गया है। हमने इस नगर का मनोविज्ञान तथा आत्मिक पक्ष देखा है जो वास्तव में महान है, परंतु उसकी भौतिक अवस्था को अंतर्ग्रहण करना भी महत्वपूर्ण है। मेरे प्रियो, यहां हमें इस नगर का संबंध नगरवासियों के साथ देखना है, अर्थात उस मुख्य नगर तथा कलिसिया का। हम यह तो नहीं सोच सकते कि वह खाली नगर नगरवासियों के बिना दुल्हन हो सकता है। अध्याय 22 पद 3, 6 और 19 में नगरवासी इस नगर के संबंध में दर्शाए गए हैं। पद 8 में बाहरी लोगों को अधिकारों से वंचित दर्शाया गया है। यद्यपि नगर और दुल्हन में अंतर रखना आवश्यक है, लेखक की मनोकामना है कि उन्हें संयोजित करें। यह अंश उसके सिंगार का वर्णन है जो दुल्हे द्वारा अपनी दुल्हन पर प्रेम एवं महत्व का प्रकटीकरण है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 21 अध्याय के 10 पद में हम पढ़ते हैं, लिखा है, तब वह मुझे आत्मा में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया और पवित्र नगर यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते दिखाया। निश्चय ही इस नगर के तुल्य इस पृथ्वी पर सांसारिक नींव पर खड़ा कोई नगर नहीं है। यह नगर स्वर्ग से उतरेगा, उसका आरंभ स्वर्ग में है और उसका बनाने वाला प्रभु यीशु है। अब यह नगर स्वर्ग से तो उतर रहा है, परंतु यह तो नहीं कहा गया है कि वह पृथ्वी पर आता है। सांसारिक नगर स्वर्ग में कभी नहीं चढ़ेगा और स्वर्गिक नगर पृथ्वी पर नहीं उतरेगा। यह नगर स्वर्ग से उतरकर कितना नीचे आया केवल कल्पना का विषय है। इस कारण नए यरूशलेम के वर्णन में विचारों ने सीमा पार कर दी है। आरंभिक झूठी शिक्षाओं में एबियानिज्म ने इस नए यरूशलेम को सांसारिक यरूशलेम कहा था। इसके विपरीत तत्वज्ञानियों के द्वारा एक और आरंभिक झूठी शिक्षा दी गई है, दूसरी ओर सीमा पार कर दी गई है। उनके अनुसार नया यरूशलेम स्वर्ग की अपेक्षा और कोई स्थान नहीं है। आज के कुछ विचारक नए यरूशलेम को अपने से जोड़कर मनपसंद स्थान पर निर्भर कर देते हैं या उसको लगाकर रख देते हैं। कहने का अर्थ है कि मनपसंद स्थान पर निर्भित कर देना। स्वच्छंद विचारक और वे जो हजार वर्षीय राज को नहीं मानते नए यरूशलेम को स्वर्ग में ही रहने देते हैं, जब सच तो यह है कि वह नगर स्वर्ग से उतर रहा है। इस बाइबल अंश से दो तथ्य प्रकट होते हैं, पहला वह स्वर्ग से उतरेगा और दूसरा स्पष्ट नहीं कहा गया है कि वह पृथ्वी पर उतरेगा। इस अंश के अनुसार वह नगर अधर में लटक रहा है। विचारक इस दुविधा से बचना चाहते हैं, उसे अधर में ही लटका क्यों नहीं रहने दें? क्या एक और सभ्यता या ग्रह का प्रकट होना असंग है? यह नया यरूशलेम या तो एक उपग्रह होगा या पृथ्वी नए यरूशलेम का उपग्रह होगी, जैसा मैं सोचता हूं, और यह सच भी हो सकता है। मेरे प्रियो, इस अध्याय से प्रकट है कि यह नगर सब वस्तुओं का केंद्र होगा। संपूर्ण महिमा और गतिविधियां इस नगर का चक्कर काटेंगी। वहां परमेश्वर का आवास होगा, वह परमेश्वर का मुख्यालय होगा और उसका जगत परमेश्वर केंद्रित होगा। अतः अनंत काल की ऐसी सर्वश्रेष्ठ स्थिति के लिए नए यरूशलेम के गुण गिनना अर्थपूर्ण है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 21 अध्याय के 11 पद में लिखा है, परमेश्वर की महिमा उनमें थी और उसकी ज्योति बहुत ही बहुमूल्य पत्थर अर्थात बिल्लोर के समान यशब की तरह स्वच्छ थी। रोमियों की पत्री 5 अध्याय के 2 पद में पौलुस विश्वासियों से कहता है, परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। यह आशा उस पवित्र नगर में पूरी होगी। पाप में पड़े हुए मनुष्य ने परमेश्वर की महिमा का प्रकाशन कभी नहीं देखा है। जी हाँ, जंगलवास के समय इसराइल ने अनुभव से सीखा था कि छावनी में जब जब विद्रोह उठा तब तब परमेश्वर की महिमा दंड देने के लिए प्रकट हुई थी। परमेश्वर की महिमा का प्रकाशन पापी मनुष्य के लिए नुकसानदायक होता है, परंतु मसीह की धार्मिकता धारण करके उसकी महिमा का दर्शन पाना कैसी महिमा की आशा है। दो अद्भुत सत्य इस नगर को परमेश्वर की महिमा की परिपूर्णता का प्रकटीकरण बनाते हैं। पहला, परमेश्वर की उपस्थिति जगत के लिए इस नगर को उसकी महिमा का स्रोत बनाती है। दूसरा, वहां भक्त जनों की उपस्थिति परमेश्वर की महिमा के प्रकाशन को बाधित नहीं करेंगे। पाप के कारण परमेश्वर मनुष्य के मध्य से अपनी महिमा हटाने पर विवश हुआ था, परंतु इस नगर में सब कुछ समाप्त हो गया है। परमेश्वर की महिमा से पूर्ण उस नगर में उद्धार प्राप्त मनुष्य का निवास परमेश्वर के योग्य एक महान लक्ष्य है। यह नगर कलीसिया के निमित्त परमेश्वर के महान उद्देश्य को प्रकट करती है। इब्रानियों के पत्र 2 अध्याय के 10 पद में लिखा है, बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाएं। और तब हम आगे देखते हैं ज्योति। ज्योति शब्द का मूल अर्थ है ज्योति का स्रोत। नया यरूशलेम ज्योति देगा, वह चांद के समान प्रकाश का परावर्तन नहीं करेगा और न ही सूर्य के समान अपनी आग से प्रकाश उत्पन्न करेगा। वह ज्योति का स्रोत होगा। जिसमें से स्वयं ही ज्योति निकलेगी। इसका कारण है वहां परमेश्वर और प्रभु यीशु की उपस्थिति। जी हाँ, जैसा प्रभु यीशु ने कहा है यूहन्ना रचित सुसमाचार 9:5 में, मैं जगत की ज्योति हूं। परमेश्वर ज्योति है। वह संपूर्ण नगर एक बहुमूल्य रत्न होगा। यह रत्न अनेक रंगों का बिलोर है, परंतु मूल में जो शब्द इस रत्न के लिए काम में लिया गया है उसका अर्थ मोफत के अनुसार हीरा या दुधिया पत्थर या पुखराज है। परंतु क्योंकि वह पारदर्शी और चमकीला है, इसलिए अति संभव है कि वह हीरा है। यहेजकेल नबी की पुस्तक 1:22 में हमें यहां पर बताया गया है बर्फ। बर्फ शब्द इस व्याख्या की पुष्टि करता है। अतः नया यरूशलेम सोने में जड़ा हुआ हीरा है। यह नगर दुल्हन के विवाह का छल्ला रूप है, यानी कि स्वरूप है। वरन विवाह ही का छल्ला है। यह कलीसिया और प्रभु यीशु की एकता का प्रतीक है। मेरे मित्रों, यहां पर हम देख रहे हैं कि कलीसिया प्रभु यीशु के साथ होगी, और यह हमारे लिए बहुत ही अद्भुत बात है कि हम मसीह के साथ होंगे। परंतु क्या हम इसके लिए तैयार हैं? यदि आज हम प्रभु यीशु के साथ होना चाहते हैं तो हम अपने आप को तैयार करें ताकि उस दिन हम उसके साथ में हों, और हमारे लिए वह आनंद का समय होगा, आशीष का समय होगा। मेरे श्रोता मित्रों, आज यहां पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मैं विश्वास करता हूं कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे और आप सबकी सहायता करे।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली है। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। नोट करें हमारा एक और मोबाइल नंबर 09651433397, 09651433397। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।
तेरा ही तो प्रेम है आया इस जहान में, तेरा ही तो प्रेम है आया इस जहान में, तेरा इंतजार है हमको मसीह इस जहान। आत्मा को तू कैसा कठिन रास्ता है, ले चल मेरी आत्मा को तू कैसा कठिन रास्ता।